नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये मिशन सरकार के 5F विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके तीन कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइंस क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों से गुजरात में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी ने सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमसिस्वयं को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। पार्टी नेता बिमल शंकर नंदी ने आकाशवाणी से कहा कि ममता बनर्जी गतिरोध पैदा करने और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी अवांछित स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान मौजूद है। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। वियतनाम के राष्ट्रपति ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 7वें ओवर में 2 विकेट पर 40 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।